मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले आप सबको एक सूचना देनी है। इनफैक्ट कल जो मैंने आप सबको सूचनाएं दी थी उसका पुनर्स्मरण कराना है। हम लोगों ने जोधपुर में एक लेक्चर का आयोजन किया है, आप आईएएस कैसे बनेंगे, या यूं कह लीजिए कि आईएएस कैसे बन सकते हैं, सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन विषयों पर बात करेंगे। उसमें मैं और मेरी पत्नी मौजूद रहेंगे। आप सब जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं, आप सब इसमें सादर सस्नेह आमंत्रित हैं। और खासकर हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं विशेष रूप से ये अनुरोध करूंगा कि वो कोशिश करें कि मुलाकात हो सके। दोस्तों, जोधपुर में जहां यह लेक्चर आयोजित होना है, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्थान है HK हाईटेक कॉलेज, 4-6 पाल रोड, रिलायंस फ्रेश के ऊपर, प्रेक्षा अस्पताल के नजदीक। स्थान है जोधपुर। डेट है 27/11/2021, सरल भाषा में कल, और समय है शाम को 5:30 बजे। तो ये छोटी सी सूचना का रिपीटेशन था। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे सामुदायिक रसोई, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कल के दूरदर्शन न्यूज पर भी आपने देखा होगा, रेडियो न्यूज में भी आपने सुना होगा जेवर एयरपोर्ट के बारे में। थोड़ी सी जानकारी बस आपको होनी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, नोएडा से सटा हुआ ही है जेवर। आप यूं कह लीजिए जो दिल्ली एयरपोर्ट है उससे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एयरपोर्ट विश्व के 4 बड़े एयरपोर्ट में से एक है, चौथा बड़ा एयरपोर्ट विश्व में। एशिया का तो फिर होगा ही, आप कह लीजिए उसके आसपास ही होगा, हो सकता है कि एशिया में एक दो और भी हों, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता, लेकिन विश्व में यह चौथा बड़ा एयरपोर्ट है। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर 2024 तक यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और इस एयरपोर्ट को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, जितना बड़ा बनाया जा रहा है, ये बहुत ही मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। कार्गो भी होंगे, इसकी कनेक्टिविटी जबरदस्त रूप से दूसरे स्थानों के लिए भी होगी। तो ये थोड़ी सी सूचना है। और इसे जो है जर्मनी की एक ज्यूरिख कंपनी है वो डेवलप कर रही है। सामान्य तौर पर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो यही महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, या भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आप जब समीक्षा या मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें आपको एक फैक्ट जरूर डालना चाहिए कि अभी की जो सरकार है ये एयरलाइंस को डेवलप करने में बहुत ज्यादा रुचि दिखा रही है। आप देखिए कि इससे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत से जो एयरपोर्ट थे वो उन्हें रख रखाव के लिए दिए गए, उड़ान योजना शुरू की गई, एयर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने टैरिफ में कम की, जो फ्यूल होते हैं उनके टैरिफ में कमी लाई, दूसरे राज्यों ने भी ऐसा किया ताकि हमारा जो देश है वो बहुत तेजी के साथ एयर कनेक्टिविटी से जुड़ सके। और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव किसी भी राज्य की या किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ये जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, आप इसे एक बहुत बड़ी सौगात मान सकते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र की। फ्रेंड्स, कुछ चीजों के बारे में मुझे लगता है कि एडवांस में बता देना उपयुक्त रहेगा। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, क्रिप्टो करेंसी पर अब बकायदे विधेयक आने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है। इसी तरह से 3 कानून वापस लेने का भी विधेयक आएगा, अभी जो हमारा संसद सत्र शुरू हो रहा है। और इसी में एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, वो है बैंकिंग कानून इन ब्रैकेट संशोधन विधेयक 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। मैं एडवांस में बताने की नीति अब इसलिए अपना रहा हूं ताकि शुरू से ही आप सतर्क हो जाएं और आप में वो धीरे धीरे क्षमता विकसित हो सके कि जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटित हुई, आगे जाकर के 10 दिन के बाद वो बड़ा रूप लेगी, तब तो आप सतर्क होकर के उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं ये इंपॉर्टेंट घटना है, तो शुरू से आप उसे देखने लगेंगे, तो वह अपने आपके अंदर बहुत ही गहराई से रचती बसती चली जाएगी। दरअसल क्या है कि इससे पहले जो कानून है 1970 में जो कानून बना था, उस कानून के अनुसार जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उन पब्लिक सेक्टर के बैंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% मिनिमम होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी होगी तो ठीक है, ताकि उसका जो मैनेजमेंट है वो सरकार के नियंत्रण में रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बैंकों का क्या हाल होते चला जा रहा है, बैंक बड़े नुकसान में जा रहे हैं, सरकार को फिर उन्हें पैसा देना पड़ता है, आखिर में ये पैसा पब्लिक का पैसा होता है, इसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में किया जा सकता था, लेकिन बैंकों के नुकसान की भरपाई के लिए वो पैसा हमारा वहां चला जाता है। तो सरकार अब बैंकों के भी निजीकरण के बारे में सोच रही, जैसे एयरलाइंस का उसने निजीकरण कर दिया, लेकिन कैसे, बैंकों का निजीकरण करना उतना आसान नहीं है। फिलहाल दो बैंकों के बारे में सरकार सोच रही है, तो अब जो निजीकरण की पॉलिसी होगी तो उसमें सरकार का यह मानना है कि वो अपनी हिस्सेदारी घटा दे, अगर वो 51% से घटा देती है तो अभी जो संशोधन विधेयक आएगा उसमें 26% करने की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है कि जो मैनेजमेंट होगा वो प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा उसमें जो पूंजी लगाएंगे उनके हाथ में चला जाएगा, तो इससे बैंकों को फिर पैसों की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं संस्था या सार्वजनिक निवेश करने वाले लोग वो बैंकों को पैसा देंगे, वो मैनेजमेंट में आ जाएंगे, प्रोफेशनल लोग होंगे, बैंकों को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, और साथ ही साथ जो सरकार नुकसान होने पर उनकी भरपाई करती सरकार का वो भी पैसा बचेगा, बल्कि इसके माध्यम से सरकार कुछ न कुछ अर्न ही करने लगेगी। तो इस तरीके से आप यूं कह लीजिए कि जो हमारी एक प्राइवेटाइजेशन या सुधारीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो भी ओपन अप होगी और सरकार के पास भी धन आ सकेगा। तो दोस्तों इसका विधेयक अभी आने वाला है, तो जब भी ये विधेयक आएगा हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आप लोग भी इसके बारे में थोड़े सतर्क रहें। एक INS वेला जो पनडुब्बी है, खासकर युद्धक पनडुब्बी, उसे अब हमारे नौसेना में शामिल कर लिया गया है, और आपको मालूम होगा कि इससे ठीक पहले INS विशाखापट्टनम को भी बेड़े में शामिल किया गया था। दरअसल खासकर एक 75 करके जो जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई प्रोजेक्ट 75, उसके तहत इस तरह की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ा रहा है और सुरक्षा की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसे देखते हुए हमारे नौसेना को मजबूत बनाया जाना बहुत जरूरी है, उसी के तहत इसे शामिल किया गया है। और इससे पहले भी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही 3 और पनडुब्बियां शामिल की जा चुकी हैं, वो हैं INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज, इसके बाद फिर विशाखापट्टनम, और फिर अब जो शामिल किया गया है वो है वेला। तो वेला शब्द आप थोड़ा सा याद रखिएगा। दूसरी जो पनडुब्बियां शामिल की गई हैं जानबूझकर के मैंने उनके भी नाम आपके सामने रखे हैं, ताकि बाय द वे अगर प्री में कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप जान सकें कि ये भी पनडुब्बियां ही हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, और वह है सामुदायिक रसोई योजना। सामुदायिक रसोई, कम्युनिटी किचन, इस शब्द के अर्थ से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। दरअसल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, और जनहित याचिका में ये कहा गया कि हमारे देश में भूखमरी की स्थिति है, और आप देख रहे हैं कि हम सूचकांक में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कितने, 116 देशों में 101वें कुछ इस तरह के स्थान पर पहुंच गए हैं, जो एक तरह से शर्मनाक बात भी है। तो जब वो याचिका दायर की गई तो उन सबको देखने के बाद सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब मांगा, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, आप यूं कह लीजिए कि ये आदेश दिया है, आप कह सकते हैं कि वो बकायदे राज्यों के साथ मिलकर के और रसोई, सामुदायिक रसोई नीति पर काम करे, सामुदायिक रसोई नीति, कम्युनिटी किचन पॉलिसी पर काम करे। जरूरी है कि इसके लिए आपको राज्यों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवस्था राज्यों को ही करनी है, धन भी लगाना है, पूरा मैनेजमेंट उनके पास है, और ये जो संकट है ये राज्यों में ही है, केंद्र की तो अपनी कोई ऐसी टेरिटरी तो होती नहीं केंद्र शासित राज्यों को छोड़ करके। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो हमारे राज्य के खाद्य सचिव हैं इनकी बैठक होने जा रही है, और उस बैठक में बाकायदे आपस में बातचीत होगी, और ये कोशिश की जाएगी, ये मतलब आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से नीति किस तरीके से बनाई जाए, कैसे सामुदायिक रसोई को लागू किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको दो बातें इसमें खासकर ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो यह है कि ये जो सामुदायिक रसोई है इसका संबंध उन लोगों से होगा जो आप, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसे हम राशन की दुकान कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उस दायरे में नहीं आते, यानी कि उनको वहां से अनाज नहीं मिल रहा है लेकिन उन्हें भूखे रहना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो नीति बनाई जाएगी वो ऐसी होगी कि जो जरूरतमंद लोग हैं बड़ी सरलता से यहां तक पहुंच सकें और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, इस तरह का मॉडल तैयार किया जाना है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश हैं सुप्रीम कोर्ट के। आगे हम देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसके लिए जो भी नीतियां अपनानी पड़े उन्हें अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि यह भी कहा कि यदि सरकार लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए कोई भी नीति लेकर के आती है तो कोई भी संविधान और कोई भी कानून उन्हें रोकने वाला नहीं है। इससे साफ लगता है कि इसके पीछे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसका अभाव है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन कितना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है, गोडाउन भरे हुए हैं, गोडाउन में अनाज सड़ जाता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो दुनिया भर का बर्बाद होता है, तो फिर हमारे यहाँ के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? तो ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। तो दोस्तों आगे जब भी इस पर कुछ घटनाएं घटित होंगी तो हम लोग इस पर लगातार बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसे ध्यान में रखना है, खासकर सामुदायिक रसोई टॉपिक को। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं रायमा शाक्य श्रीगंगानगर राजस्थान से और भास्कर शर्मा राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।